सिंधबाद का छठा सफर।
अस्सलाम वालेकुम भाई सिंधबाद।
वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो शहर के तमाम नौजवान ताजी जमा हो गए हैं। तो है भाई सुल्तान बिन अकील,
हम आपके पास एक दरखास्त लेकर आए हैं भाई सिंधबाद।
हाँ फरमाइए फरमाइए।
बात दरअसल ये है कि बगदाद में कारोबार करके दाल रोटी का इंतजाम तो हो जाता है मगर कुछ बचता नहीं है, क्यों भाई उमर इब्ने हारिस?
बिल्कुल सही कहा आपने भाई सुल्तान बिन अकील, कुछ बचा ना सके तो आगे चलकर बाल बच्चों का क्या होगा? आपकी क्या राय है भाई मिसबाउद्दीन?
राय क्या होनी है, जब तक दूसरे मुल्कों में जाकर सामान वगैरह ना बेचा जाए उस वक्त तक तो यही हाल रहेगा।
इसीलिए तो हम ये दरखास्त लेकर आए हैं कि इस बार जब भाई सिंधबाद अपने अगले सफर पर जाएं तो हमें भी साथ ले चलें।
नहीं भाई नहीं, सफर का ख्याल तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, जवानी की बात और थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे का साया फैलता जा रहा है और फिर अल्लाह ने इतना दे दिया है कि सात नस्लें आराम के दिन गुजार सकती हैं।
दौलत की खातिर नहीं तो शौक की खातिर चलिए,
अपने लिए ना सही हमारे मुस्तकबिल के लिए चलिए।
हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, इनकार कर दिया तो हमारा दिल टूट जाएगा।
उफ़ आप लोगों ने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है।
आखिर हुजूर ने उनकी मुश्किल आसान कर ही दी।
क्या करता भाई इन बात, उनकी जिद के आगे मेरी एक न चली। मैंने एक जहाज खरीदा, सामान वगैरह लिया और नौजवान ताजरों को साथ लेकर अपने छठे सफर पर निकल पड़ा। छोटे बड़े जजीरों और बंदरगाहों पर हम अपने अपने माल को अच्छे अच्छे मुनाफे पर बेचते हुए आगे ही बढ़ते रहे। मेरे नौजवान साथी ताजिर इस कामयाबी पर बहुत ही खुश थे और मुझे दिन रात दुआएं देते रहते थे। एक रात
भाई सिंधबाद, भाई सिंधबाद, आपको कप्तान साहब बुला रहे हैं।
फौरन अभी इसी वक्त।
खैरियत तो है?
पता नहीं क्या बात है, बहुत परेशान मालूम होते हैं, अपने सर के बालों को नोचे जा रहे हैं।
आइए चलिए।
क्या बात है कप्तान साहब, गजब हो गया सिंधबाद साहब, हमारे जोर में जहाज का रफ्तार बदल गया है, दाम मेरे अख्तियार से बाहर हो गया है, फिर अब क्या करना चाहिए? जान बचाने की तरकीब सोचिए, मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं रहा है, हमारा जहाज किसी वक्त भी किसी खतरा से भरा सकता है।
सब लोग छोटी कश्तियों तक पहुंचने की कोशिश करें, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए।
शुक्र है कि जान तो बच गई।
हम जहां बैठे हैं ये फिर किसी समुद्री जानवर की पीठ तो नहीं है?
मेरा ख्याल है हम इस वक्त किसी छोटे से पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं, पानी उतरने के बाद शायद उस पहाड़ी सिलसिले तक जाने का रास्ता निकल आए।
पानी तो न जाने कब उतरेगा, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ खाने पीने का सामान भी हमारे साथ ही बहता हुआ आ गया है, निकालो जल्दी करो भाई मिसबा, जल्दी लाओ, ये भी कोई पूछने की बात है।
सब लोग बस थोड़ा थोड़ा खा ले, जब तक पानी नहीं उतरता हमें इसी पर गुजारा करना होगा।
अभी तो खा ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा।
पानी तो उतरने का नाम ही नहीं लेता,
इतने दिन हो गए पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा, समंदर का गंदा पानी पी पी के मुझे तो उल्टियां
आने का नाम ही नहीं लेता।
ये तो बेहोश हो गए, इनके तो हाथ पैर भी ठंडे हो गए। भाई मिसबा,
भाई तो सांस भी बंद है। सिंधबाद साहब, सिंधबाद साहब,
साथियों मिसबा हमारा साथ छोड़ गए, आइए इनके कफन दफन का इंतजाम
करें।
पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा था मगर मेरे साथी इंतजार न कर सके। भूख और प्यास की शिद्दत से थोड़े थोड़े दिनों के बाद तमाम के तमाम मेरा साथ छोड़ गए। ये कैसा सफर है मालिक, जो जिद करके मुझे साथ लाए वही मुझे तनहा छोड़ गए। सबका कफन दफन तो मैंने किया, अब मेरा क्या होगा मेरे मालिक? क्या मेरा जिस्म समंदर की मछलियों की रजा बन जाएगा? नहीं 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 मेरे मालिक, नहीं नहीं नहीं। पानी उतर रहा है, पानी उतर रहा है, सूरज भी निकल आया, पानी उतर गया, पानी उतर गया। शुक्र है खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। झाड़ियों के अंदर क्या चीज चमक रही है? अरे ये तो हीरे जवाहरात और मोतियों से भरी हुई पेटियां हैं, और एक दो नहीं छोटी बड़ी 500 पेटियां हैं। यकीनन किसी बहुत बड़े ताजिर के जहाज चट्टान से टकरा कर टूट गया होगा। और वो क्या है, लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते भी फंसे हुए हैं। हाँ अब मैं बच सकता हूँ, अब मैं बच सकता हूँ, मैं बच सकता हूँ। यहाँ से निकलने का रास्ता तो कोई भी नहीं है। मैं अगर सारी दौलत भी जमा कर लूं तो जाऊंगा कैसे? पहाड़ी के अंदर वो रास्ता सब क्या है? पानी तो वहां भी है, पर वो घार रहे या पहाड़ी दरिया? घार हुआ तो अंदर जाकर मर जाऊंगा, और अगर पहाड़ी दरिया हुआ तो फिर कहीं ना कहीं निकलना जरूर होगा। एक न एक दिन तो मरना ही है, तो फिर डरना क्या? मैंने झाड़ियों के अंदर से फंसी बेटियों और लकड़ी के तख्तों को निकाला, बड़ी बड़ी बेटियों के ऊपर तख्ते रखे, इधर उधर बहती हुई रस्सियों की मदद से नहायत मजबूती के साथ बांधकर एक बड़ी सी कश्ती जैसी चीज बना ली। फिर उन पर छोटी छोटी बेटियां रखी और मैं खुद कश्ती में सवार हो गया। कश्ती को मैंने गार वाले रास्ते की तरफ बहा दिया। इतने दिनों की भूख प्यास और थकन के बाद जब बहती हुई कश्ती के हिचकोले लगे तो न मालूम मुझे नींद आ गई या मैं बेहोश हो गया।
अरे वो देखो सामने क्या कर रहा है, इस पर तो कोई आदमी लेटा हुआ है।
जिंदा है या मर गया?
अरे जिंदा है, जिंदा है, दिल धड़क रहा है, शायद सो रहा है।
सोने दो, सोने दो, नींद खराब ना करो।
अरे ये पेटियां तो देखो, हीरे जवाहरात और मोतियों से भरी हुई हैं।
अरे ये जब तक सो रहा है थोड़े से हीरे और जवाहरात तो निकाल ही लो।
अरे मगर ये तो चोरी हुई।
चोरी कैसे हुई? क्या पता मुसलमान है या काफिर?
अरे काफिर हो या मुसलमान, इंसान तो है, और बगैर पूछे कुछ लेना चोरी नहीं तो और क्या है? जाग जाएगा तो बादशाह सलामत के पास ले चलेंगे।
देखो देखो आंखें खुल रहा है।
अस्सलाम वालेकुम भाई।
अस्सलाम वालेकुम।
आप कौन हैं? कहाँ जा रहे थे, यहाँ कैसे आ गए?
पानी, पानी, खाना, खाना, कुछ खाने को दे दो, सब 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 कुछ बता दूंगा। अपने मेहरबान दोस्तों के घर जाकर मैं चंद दिनों तक आराम करता रहा। मेरे बच जाने की कहानी उन लोगों ने सुनी तो हैरान रह गए, और सारी बातें अपने बादशाह सलामत को सुना दी।
मरहबा मरहबा, सरंदीप का बादशाह मुबारक इब्ने हुसैन ही तुम्हारी बहादुरी की दास्तान सुनकर बहुत खुश हुआ सिंबाद। तुम्हारी नई जिंदगी तुमको मुबारक हो।
ये सब तो आपकी मोहब्बत और आपके सिपाहियों की हमदर्दी का नतीजा है बादशाह।
नहीं नहीं नहीं, वो तो इनका इंसानी फर्ज था सिंबाद।
बादशाह सलामत अगर इजाजत दी तो मैं हुजूर की खिदमत में हीरे जवाहरात और मोतियों से भरी अपनी सबसे बड़ी पेटी पेश करना चाहता हूँ। सिंबाद की तरफ से एक छोटा सा नजराना समझकर कबूल कर लीजिए बादशाह सलामत।
इसका फैसला बाद में होगा सिंबाद, पहले हमें एक बात बताओ।
हुक्म लीजा।
हीरे जवाहरात और मोतियों से भरी हुई इतनी बहुत सारी पेटियां तुम इतनी आसानी से लिए फिर रहे थे, कुछ चोरी डकैती का खतरा नहीं था?
आपने जिन दो चीजों के नाम लिए हैं बादशाह सलामत, हमारे मुल्क में इनका कोई वजूद ही नहीं है। जब मैं जानता ही नहीं कि चोरी क्या होती है तो फिर डरना कैसा?
अच्छा,
बादशाह सलामत को शायद मालूम नहीं है कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ और हमारे खलीफा का नाम है खलीफा हारून रशीद।
मरहबा मरहबा, तुम्हारी बहादुरी और जहानत की वजह समझ में आ गई है सिंबाद। हम भी तुम्हारे खलीफा की दिलो जान से इज्जत करते हैं सिंबाद, और उन्हीं के बताए हुए उसूलों पर अमल भी करते हैं। चोरी और डाका हमारे मुल्क में भी कोई नहीं जानता।
मुझे मालूम है बादशाह सलामत, जो खजाना मैं अपने साथ लाया था उसमें से एक मोती भी कम नहीं हुआ।
हम तुम्हारे खलीफा हारून रशीद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उम्मीद है तुम हमारी मदद करोगे।
हुक्म कीजिए बादशाह सलामत।
तुम्हारे खलीफा के लिए हम तहायफ भेजना चाहते हैं, क्या तुम ये तहायफ खुद ले जाकर अपने खलीफा की खिदमत में पेश कर सकते हो?
मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है बादशाह सलामत।
तहायफ का इंतजाम किया जाए।
अपनी मेहरबान सिपाहियों को अच्छे अच्छे तहायफ देकर और बादशाह सलामत की तरफ से खलीफा हारून रशीद के लिए तहायफ लेकर मैं बसरा के लिए रवाना हो गया। वापसी पर हीरे जवाहरात और मोतियों को अच्छे अच्छे दामों पर बेचता हुआ मैं बसरे पहुंचा और वहां से थोड़ी दिनों बाद खलीफा के दरबार में पहुंचकर सरंदीप के बादशाह मुबारक इब्न हुसैनी के तहायफ पेश कर दिए। गरीबों में दौलत तकसीम करने के बाद मैंने एक यतीम खाना बनवा दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहा।
अल्लाह की मेहरबानियों के साथ साथ गरीबों और यतीमों की दुआओं का भी बड़ा सहारा होता है सरकार। अच्छा, अब इजाजत दीजिए।
भाई इन बात अपने हिस्से की अशर्फियां तो लेते जाओ।
मैं तो पहले ही आपका बहुत एहसान मंद हूँ सरकार।
लोग ही नहीं तो मैं कल अपने आखिरी सफर की दास्तान नहीं सुनाऊंगा।
ये कैसे हो सकता है सरकार। शुक्रिया। खुदा
खुदा हाफिज।